मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान् जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गे सयाने पूजून हे सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की जो प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने हमें दी है उस पर विचार करने यहाँ बैठे हुए हैं। एक सद्गृहस्थ भी अपनी घर गृहस्थी के बीच रहकर अपना आध्यात्मिक आत्मिक विकास कर सकता है। उसके मन में संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का अगर विचार निरंतर चलता रहे तो वो आसानी से अपने जीवन को व्यवस्थित बना लेता है। मजा ये है अपन लोगों के साथ कि संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता को जान करके भी और हम अपने अंदर एक भय और एक आशा, झूठा ही भय है और झूठी ही आशा है, वो पाले रखते हैं और उसकी वजह से और हम निरंतर अपने ही लिए दुख का इंतजाम करते रहते हैं। ये बात जुदी है कि लगता ये है कि जैसे किसी और से कहीं और से मेरे जीवन में दुख आ रहा है, जबकि मेरी अपनी झूठी आशा और मेरा अपना झूठा भ्रम, ये दोनों ही चीजें मुझे निरंतर इस दुखमय संसार में भटकने के लिए बाध्य करती हैं। सद्गृहस्थ गृहस्थी में रहकर निकटता से इन संसार शरीर और भोगों को अनुभव करता है और अगर वो उसमें से अपने जीवन के लिए और शिक्षा ग्रहण कर ले तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। शरीर मरण धर्मा है लेकिन उसी की संभाल में लगे रहते हैं। भोग विलास की सामग्री अंततः दुख में ले जाने वाली है लेकिन फिर भी मुझे चाहिए और अधिक मात्रा में चाहिए, संतोष नहीं होता। जबकि उसकी तासीर मालूम पड़ जाए कि कभी भी हम इसकी तृप्ति नहीं कर सकते, इसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं और संसार के बारे में सब जानते हैं, यहां निरंतर आवागमन लगा हुआ है, जन्म है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, बीच में बुढ़ापा नहीं भी आता है पर मृत्यु और जन्म तो अनिवार्य है। ये संसार की वास्तविकता है, फिर भी जन्म मुझे हर्ष दे के जाता है, मरण मेरा पीड़ा से गुजरता है, ये मेरा एक भ्रम है। और इतना ही नहीं, इन संसार शरीर और भोगों में मुझे निरंतर ये आशा बनी रहती है कि शायद सुख मिल सकता है। हम लोग अंततः निराश नहीं हो पाते हैं। दो तरह से निराशा होती है, एक तो जब कोई चीज नहीं मिलती है तो बड़े दुखी होकर के निराश होकर के उसे छोड़ देते हैं, वो जीवन में अतृप्ति है, लेकिन अगर सचमुच एक बार हम इस संसार शरीर और भोगों से निराश हो जाएं, तो हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। कैसी वाली निराशा कि रेत से बहुत कोशिश की तेल निकलेगा लेकिन नहीं निकला, तो ये पता लग गया कि इससे निकल ही नहीं सकता, तो काय को विकार में प्रयत्न करूं। पानी में से मक्खन नवनीत निकालने की बहुत चेष्टा करी लेकिन प्रयास करने के बाद ये तय हो गया, ये भ्रम टूट गया कि इसमें से निकलेगा, तो ये आशा भी जाती रही कि निकलेगा। वास्तविकता मालूम पड़ने से भ्रम टूटता है और भ्रम टूटने से जो हमारी मिथ्या आशाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती। तो एक ऐसी निराशा कि जिसमें अब कोई आशा शेष ही नहीं है, यहां से निकल ही नहीं सकता सुख संसार शरीर और भोगों से, तब फिर मैं क्यों व्यर्थ ही प्रयत्न करूं। लेकिन क्या करें, इतना गहरा संस्कार है अपन का कि सारी बातें सुनते जानते समझते अनुभव करते हुए भी, और जानित जई चिंतित जई जीव जरा मरण भय दुखई विशेषु न विरत जई अहो सुबद्धो माया गंठी हो। आचार्य भगवंतों ने आश्चर्य करते हुए लिखा कि ये जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहां इस संसार में मैंने सिवाय जन्म मरण की पीड़ा के और कुछ नहीं पाया, लेकिन विशेषु न विरत जई, लेकिन विषया शक्ति से विरक्त नहीं हो पाता। अहो सुबद्धो माया गंठियो, ये मिथ्यात्व की ये मोह की ग्रंथि गांठ बहुत बहुत मजबूत है, तोड़े नहीं टूटती, ये संस्कार जाता नहीं है। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था और जब टिकट चेकर ने उससे टिकट मांगी तो मालूम उसने क्या करा, इस पॉकेट में हाथ डाला, उस पॉकेट में हाथ डाला, और जब नहीं मिली तो सूटकेस खोलने लगा। तो उसने कहा, जनाब खरीदी वरीदी है कि नहीं? बोले है। तो अब वो कहां रख दी, मैं भूल गया। और जब सूटकेस में भी जहां रखी जा सकती वहां रखी, ढूंढी तो वहां भी नहीं मिली, तो अब सूटकेस में जो कपड़े रखे थे उनकी पॉकेट में देखना शुरू किया। वो खड़ा हुआ है चुपचाप, 10 मिनट हो गए, भाई देव तुम रखे हो कि नहीं रखे? बोले हाँ है तो मेरे पास अब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां रखी हुई है। और जब उसमें भी नहीं मिली तो अंततः जो है उसने अपने जूते के जब बंद खोलना शुरू किए तो सारे लोग गड़बड़ में आए कि क्या कर रहा है। तो उसने कहा, शायद हो सकता है जूते के तल्ले में रख ली हूं मैंने। सामने वाला पॉकेट उसने एक भी हाथ डाल के नहीं देखा, तो सबने उसका ध्यान दिलाया कि तुम सब जगह देख रहे हो, वो जो सामने वाला पॉकेट है उसमें देख लो ना। उसने कहा, सुनो वो तो कम से कम बचा रहने दो, अगर उसमें भी नहीं मिली तो सारी आशा ही टूट जाएगी। अभी तो थोड़ी आशा है कि उसमें शायद हो सकती, बाकी जगह ढूंढ ले दो, जहां जहां नहीं है वहां। ये उदाहरण पढ़कर के हंसी आती है कि हम भी शायद यही कर रहे हैं, जहां जहां हमें मालूम है नहीं है सुख, वहीं वहीं सुख ढूंढते हैं जहां सुख है। जरा ठहरो, आशा बनी रहने दो कि शायद यहां मिले। इतना गहरा संस्कार है जानते हुए भी, और हम इस भ्रम को शायद कई बार तो लगता है कि स्वयं ही तोड़ना नहीं चाहते, हम एक भ्रम बनाए रखना चाहते हैं कि यहां सुख मिलेगा, और अंततः निराशा ही हाथ लगती है, नहीं मिलता है। पर फिर भी दोहराए चले जाते हैं, सुबह से शाम तक वो ही सारी चीजें दोहराते हैं जिनसे कल हमने दुख प्राप्त किया था। ये है आशा जो कि टूटती नहीं है, ये है भ्रम जो कि हटता नहीं है। संस्कार की प्रबलता और हमारी पुरुषार्थहीनता, संसार संस्कार कितने भी प्रबल हो, तीर्थंकरों ने भी अपने कर्मों से जीत करके और अपने कर्मों पर विजय प्राप्त की है, तब हम नूनी की परंपरा के हैं, हमारे भीतर भी अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए इन संस्कारों को तोड़ने के लिए, वरना तो पूरा जीवन ऐसे ही दोहराने में निकल जाएगा। एक सदगृहस्थ ऐसा विचार करता है कि कब तक दोहराता रहूं ये सब, सुबह से उठ करके शाम रात सोने तक सिर्फ विषयों की आशा है, निरंतर चलती रहती, कभी भी कम नहीं होती, घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती, मोर एंड मोर, थोड़ा हुआ तो ज्यादा। गोटे गांव में एक व्यक्ति मिले थे तो वो कहते थे, महाराज 65 रुपए से दुकान शुरू करी थी, 65 रुपए से, और आज ये स्थिति है कि नगर में अच्छे सेठ लोगों में नाम गिना जाता है, अब तो महाराज फुर्सत ही नहीं मिलती मंदिर जाने की, पूजन करने की। अब तो मशीन हो गया हूं मैं, पैसे कमाने वाली मशीन। अब उससे कम में काम नहीं चलता, सारा घर मेरे तरफ आंखें लगाए हुए है कि और इस अब शायद आज और ज्यादा कमाई हो। पहले 65 रुपए में हमने पूरी गृहस्थी उतनी ही चलाई और आज 65 लाख रुपए के बावजूद भी गृहस्थी में संक्लेश मचा रहता कि और ये पूर्ति नहीं हुई, ये पूर्ति नहीं हुई, ये कमी रह गई, ये क्या चीज है। ये संसार में उलझने की प्रक्रिया है। और हम निरंतर अगर विचार करें कि अरे रोज रोज मैं इस तरह से उलझता ही चला जाता हूं, सोचता हूं कि सुलझ जाऊंगा, पर सुलझन तब होगी जबकि इन आशाओं को हम कमती करेंगे, आशाएं बढ़ाते जाएं और उनकी पूर्ति के उपाय खोजते चले जाएं, तो कभी भी ये समाप्त नहीं होने वाली। ये तो रिपीटिशन है और हमें मालूम भी है कि रिपीटिशन है, लेकिन उससे ऊब नहीं होती है क्योंकि हम उसको नए नए रूपों में परिवर्तित करके फिर भोगते हैं। दुख एक ही है लेकिन अलग अलग संदर्भों में दुख आता है, तो सोचते हैं कि अरे अभी तो इस तरह आया था, अब कोई बात नहीं, हम सावधानी रखेंगे, स्वयं से नहीं आएगा, सुबह से आएगा, दूसरे तरह से आएगा, आएगा लेकिन। पर ये भ्रम है कि नहीं अब नहीं आएगा, अब तो मैंने बहुत इंतजाम कर लिया, अब तो दुख का कोई उपाय नहीं रह गया। और इसी तरह सुख के बारे में है कि चलो यहां नहीं मिला, थोड़ा कमती मिला, ऐसा कर लेंगे तो और थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन आज तक न सुख की चाही हुई, जैसी सुख चाहा था वैसा सुख नहीं मिला, और जैसा दुख से बचना चाहा था वैसा ना दुख से बच पाए। पर फिर भी दोहराने की प्रक्रिया बनी ही रहती है। एक सिनेमा में दो लोग सिनेमा देख रहे थे, जा नहीं कह रहे कि आप देखियो, और हमारे कैसे भी कहा हुई, हम कह दें कि नहीं देखियो, सो भी कचू नहीं होने, जो उनको है शौक सो है। जबकि रोज सिनेमा है अपने देखें, अगर संसार में तो वो तो होते पर्दा पे दिखाई पड़ता, यहां तो जीते जागते होता, वो तो उसमें दिखा देते हैं इकट्ठा एक साथ। अपन को उसका शौक है कि अभी की बात क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अपने जीवन के बारे में मालूम पड़ जाए कि एक ही बात का हुई है तो बिल्कुल तय है कि अब जिंदा भय हो सुमर हो, जो तो तय है उनका सिनेमा देखने में। बताओ आप, जो जन्म जिसने लिया है, हाँ, जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, कहां होगा ये नहीं कहा जा सकता, कैसे होगा ये नहीं कहा जा सकता, कितने दुख और सुख भोग करके होगा ये नहीं कहा जा सकता, पर ये तो है कि ये होगा। उसमें तो 17 रीलें फिक्स हैं, सुबह की बात जा है, एक ही बात जा है, सो बिल्कुल तय है। अपने जीवन में जरा विविधता मालूम पड़ती है कि ऐसा हुआ, अब शायद ऐसा होगा। तो वो दोनों जन देख रहे थे, उसमें एक घुड़दौड़ दिखाई जा रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे। अब काला घोड़ा भी था, नीला घोड़ा था, नीला घोड़ा तो जो है वो थोड़े पीछे रह गया, काला घोड़ा उससे आगे निकल गया, तो जो बाजू वाला था वो कहने लगा कि लगता है काला वाला घोड़ा जीतेगा। तो दूसरा तो चुपचाप बैठा हुआ था, कहने लगे सुनो नीला वाला जीतेगा। अरे कहने लगे ऐसे कैसे, वो तो पीछे रह गया और काला आगे है। कहने लगे देखते जाओ। अब हुआ ये कि जब घोड़दौड़ समाप्त हुई तो जीता वो नीले वाला घोड़ा। तो पहले वाले से उसने कहा कि लगता है तुम तो अच्छी भविष्यवाणी कर लेते, तुम्हारी बात सही निकली, नीले निकला आगे। कह ले जा फिर हम दूसरी बार देख रहे, पहले भी देख चुके जा तो हम, वो तो नीलो ही निकला। आया समझ में आप, रोज रोज दोहराते हैं, मालूम है कि जय मिलने वाला, जय दुख आने वाला है, लेकिन दूसरे को बताने के लिए पहली मालूम होती कि ऐसा हो नहीं है। लेकिन उसमें तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत समझदार हो गए, लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसे ही समझदारी हो जावे कि क्या मिलने वाला है इससे, आखिरी में यही उलझन मिलने वाली, थोड़ी सी चिंता और संताप में जीवन व्यतीत होने वाला है, थोड़ा अपना इन सब से हट करके आत्म कल्याण और आत्म सुख प्राप्त करने का उपाय तो कर लूं, बस इतनी जहां ललक मन के भीतर आई, भ्रम टूटा, आशाएं घटी और ये आध्यात्मिक विकास की शुरुआत हो गई। मिथ्यात्व भ्रम है, वो हटने पर फिर संसार की आशाएं
ज्यादा शेष नहीं रहती। एक बार दृष्टि निर्मल होती है तो विरक्ति ही आना शुरू होती है। इसलिए पंच परमेष्ठी की शरण लेकर के शुरुआत करी थी और धीरे धीरे विषया शक्ति घटती चली जा रही है। हैं घर गृहस्थी में लेकिन विषया शक्ति घट रही। अब 12 व्रत लेने के बाद सुबह दोपहर शाम समता भाव, जो कि तमाम घर गृहस्थी में विषमताएं ही विषमताएं हैं, उसके बीच समता भाव का अभ्यास कर लिया। अब लेकिन उस समता भाव से ऐसा मन में और निर्मलता आई कि पर्व के दिनों में तो अष्टमी चतुर्दशी को पूरा दिन ही धर्म ध्यान में व्यतीत करूंगा, स्वयं करूंगा, दूसरे के लिए भी उपकार करके और दो बातें धर्म की सुनाऊंगा। और आगे बढ़ करके अब भोजन इत्यादि जो भोग उपभोग की सामग्री है उसमें भी क्या करूं, मेरे से तो अपने भोग उपभोग की सामग्री की प्राप्ति में अपार जीवों की क्षति होती है। मैं क्यों ना अपनी भोग उपभोग की सामग्री को सीमित करने के लिए प्रासुक करके ही जीव राशि की का संरक्षण करके ही अपना जीवन यापन करूं। तब जाकर के और मन में विचार आता है, एक कदम और आकर के अन्नम पानम खाद्यम लेहियम नाशनाति यो विभावरियाम सच रात्रि भुक्ति विरतः सत्तेश अनुकंपमान मना। अब अनुकंपा और अधिक बढ़ जाती है, दूसरे के दुख से अपना हृदय द्रवित हो जाना ये अनुकंपा कहलाती है। प्राणी मात्र यहाँ दुखी है, हम स्वयं भी सब जीव यहाँ दुखी हैं। अब लेकिन उस दुख से अनुकंपित होने लगा है, दया से द्रवीभूत होने लगा है मन। इसलिए चारों प्रकार के आहार का रात्रि में स्वयं तो त्याग कर दिया था, पर अब दूसरे को ना कराएंगे ना उसका समर्थन करेंगे। ये 9 प्रकार की विशुद्धि पूर्वक और व्रत धारण कर लिया। जितनी मन के भीतर दया है, जितनी अनुकंपा है, उसका परिणाम है ये। अब देखो अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो अभी हमारी दया में और हमारी अनुकंपा में कितनी कमती है। जरूर हमारे मन में भाव जरूर है, हम दयालु हैं, लेकिन कहां हम दयालु हैं अगर हम स्वयं रात्रि में भोजन करते, दूसरे को कराते हैं, और या कि दूसरा कोई करे तो उसका समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है सब। तो ये आचार्य भगवंत कह रहे कि अभी आपके भीतर दया धर्म आया नहीं है। अभी वचनों में आया होगा आपके, लेकिन हृदय में नहीं आया। जिसके हृदय में दया धर्म आ जाता है, अहिंसा धर्म आ जाता है, वीतराग धर्म आ जाता है, कहो आत्म धर्म आ जाता है, ऐसा कहो, तो फिर उसके लिए कहीं इस तरह का विचार ही मन में नहीं आता कि जिंदगी भर खाते ही रहेंगे क्या, क्या पशुओं के समान सुबह से शाम तक और मुंह चबता चलता ही रहे, भोजन की आकांक्षा बनी ही रहे। बताइए, इधर जरा सा देखा, इधर थोड़ा सा खा लो, उधर देखा उधर खा लो, वो उधर पान का ठेला दिख गया तो वहां पर खड़े होकर के वहां खा लो, जब समझ में आया तब खा लो। क्या 24 घंटे जीवन इसी के लिए मिला हुआ है? नहीं। ऐसा विचार करके वास्तव में दूसरे पर दया करना अपने ऊपर ही दया करना है। दूसरे पर क्या दया करेंगे, पर अपने ही प्राणों की रक्षा कर लो, इतना ही बहुत है। तो अपने ऊपर दया का भाव आ जाता, अपने दुख से हम दुखी हैं और अपने को दुख से बचाना चाह रहे, अपनी आत्मा को, जो अपनी आत्मा को दुख से बचाना चाहता उसके माध्यम से किसी की आत्मा को दुख हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में अहिंसा तो कदम कदम पर आ जाएगा। ऐसी भावना के साथ में और वो रात्रि भोजन का त्याग कर देता है। अभी तक दूसरे को क्या करें, घर गृहस्थी में 4 लोग आएंगे तो उनको भी जिमाना पड़ता है, खुद ने तो छोड़ दिया लेकिन अब घर में आया है तो क्या करें। लेकिन अब निश्चित कर लिया कि इस घर में ना मैं रात में करूंगा ना इस घर में आने वाले को रात्रि में भोजन मिलेगा। पहले ही लिख दिया गया, सबको डिक्लेयर कर दिया कि आप आए पधारें, मेहमानी हमारे घर में आपकी हम अच्छी करेंगे, लेकिन आपको हम रात में कुछ दे नहीं पाएंगे, खिला नहीं पाएंगे। जैसे कि आगरा वाले वो आते हैं बैनाड़ा जी, उनके घर में एक बार मैरिज के समय पर और कलेक्टर आ गए और उनको 6:30 का टाइम दिया था, लेकिन वो 8:30 बजे आ पाए। तब इन्होंने सिर्फ उनके सामने पानी और दूध ले जा करके रखा, तो कहने लगे कि मिस्टर, हम तो आपके यहाँ पर भोजन पे बुलाए गए हैं। तो उन्होंने कहा, आप देर से आए। तो बोले, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, इंसल्ट तो आपने हमारी की, हमने आपको 6:30 बजे बुलाया था, आप 8:30 बजे आके हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। हमने आपकी नहीं करी, हम आपको रात में इतना ही दे सकते दूध पानी, हमको हम आपको भोजन नहीं करवा सकते। हमारे घर का डिसिप्लिन है कि यहाँ पर रात्रि में किसी को भोजन नहीं दिया जाए, ना हम करते हैं ना दूसरे को कराते हैं, है हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य। होना तो ये चाहिए, विदेश में भी भैया डिनर क्या चीज है, लंच क्या चीज है, ब्रेकफास्ट क्या चीज है, इन सब के इंग्लिश के हिंदी मायने क्या हैं, कभी देखिएगा उनकी डिक्शनरी जो निकली हुई है इंग्लिश में। ब्रेक द फास्ट, ब्रेकफास्ट, डिनर जो कि डे के एंड में लिया जाए वो डिनर, लंच ब्रेकफास्ट के बाद जो लेने वाली चीज है वो कहलाती लंच। अपन ने बना लिया है सुबेरे उठते ही साथ बिना नहाए धोए और नाश्ता, वो हो गया साहब ब्रेकफास्ट। दोपहर में आप अच्छा हैवी ले लिया, सुबह 12-1 बजे 2 बजे तक साहब लंच ले रहे हैं, और 8 बजे रात को जनाब वहां पर इतनी धूप रहती है डिनर के समय जितनी 4:30-4:30 इंडिया में रहती, भले ही उनके 8 बजते हैं। डिनर के मायने 8 बजे लिए जाने वाला नहीं है, 48 मिनट पहले आहार लिया जाए सूर्य अस्त होने के। कभी आप इस चीज को बहुत पढ़िए और समझिए, जाकर के देखिएगा कि किस तरह की स्थिति है। लेकिन अपन तो बस वो भेड़ चाल वाली है, गुलामी रही अपनी, तो अपन ने गुलामी करी 100-200 साल विदेशियों की। सुबह टक जाती नहीं, टक कहलाती, अपन कहते हैं टक अपनी जाती नहीं है, वह पड़ी हुई है टक, गुलामी करवेगी सुबह जो कजू करस उनकी नकल करस मनो बिना अकल के करस। उनके यहां पर कोई परोसगारी करने वाला नहीं था, सुनने की अपने उठा से अपने हाथ से उठाओ रे और खाओ रे। स्वपन ने भी कही कि हाँ उठाओ और खाओ, अपन भी अब बड़े आदमी हो गए तो उठाओ और खाओ, कह परोस वाले को ही नहीं है। होते तो है जरूर, हमारे यहां तो ये सब चीजें बहुत सहज थी, लेकिन आज इन सब को हमने एक तरफ रख दिया, हमारी पहचान ही खो गई। फिर हम क्या प्रतिमाएं धारण कर पाएंगे? छठवीं प्रतिमा को धारण करने वाले के घर का डिसिप्लिन, उसका स्वयं का उपकार होता और उसके परिवारजनों का उपकार होता है। अभी तक मैं इसकी व्याख्या ऐसे करता था कि वो बेटे और बहू के जिम्मे सौंप देगा कि तुम व्यवहार चलाना हो तो तुम कराओ भोजन इत्यादि। अब मैं चेंज करता हूं कि नहीं, बेटे बहू को नहीं सौंपता, उस घर का डिसिप्लिन ही ये बना देता है कि इस घर में मैं भी रात में नहीं खाता और उस घर में जो आएगा उसको रात में नहीं खिलाया जाएगा। ये मेरे घर का डिसिप्लिन है, क्योंकि मेरा घर है, मैंने बनाया है, तो मेरे डिसिप्लिन के हिसाब से चलेगा। आपको बुरा मानना हो तो अपने घर बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में इससे। लेकिन थोड़े से व्यवहार के पीछे, और वो भी ऐसा मिथ्या व्यवहार जिसमें कि हम अपना और दूसरे का आहित करें, ऐसा कैसा व्यवहार? कल टूटता आज टूट जाए, क्या फर्क पड़ने वाला? नहीं खिलाएंगे इतना ही कह लेंगे कि गए थे उनके घर, उन्होंने जीवे तक की नहीं पूछी, भोजनों की नहीं पूछी, चाय की नहीं पूछी, तो क्या अभक्ष खिला दें हम? जैसे कि मैडम दफ्तरी जब ताजमहल होटल में और एक डेपुटेशन आया विदेश से, उन सब के लिए जापानीज को और भोजन करवाने के लिए गई, और वहां उन्होंने हनी आइसक्रीम मांगी, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको हनी आइसक्रीम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने कहा हम आप हमारे गेस्ट हैं और हम आपको किसी का वॉमिट खिलाएंगे क्या? उन्होंने कहा क्या मतलब? बोले यही कि वो तो मधुमक्खियों का वीज का वॉमिट है शहद, और वो आपके आइसक्रीम में डाल के वो हम आपको खिलाएं? हम आप हमारे मेहमान हैं, हम अपने देश में आपका ऐसा अपमान नहीं करेंगे कि किसी का ओगाल किसी का वॉमिट आपको खिलाएं। बताइए, इतनी सी बात सुनकर के वो 20 के 20 जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे बिजनेस के काम से जापान से, उन्होंने सबने हनी को त्याग कर दिया। हमारी परंपराएं जो रही, हमारे डिसिप्लिन रहे, वो अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए डिसिप्लिन रहे, किसी को तकलीफ में डालने के लिए नहीं रहे। तो ये जो प्रतिमाएं इत्यादि हैं वो सिर्फ अपने ही जीवन के उत्थान के लिए नहीं है, दूसरे के जीवन के लिए भी विकास में कारण है, दूसरे को भी प्रेरणा मिलती कि हाँ ठीक तो चारों प्रकार के आहार का स्वयं त्याग कर दिया। जो भी आएगा आप उससे भी कह देंगे कि आप भी करो भाई, हमारे यहाँ पर तो ये चारों प्रकार का आहार रात्रि में नहीं मिलेगा आपको, दिन में आओ, आपकी खूब अवगत करेंगे दिन में हमें। और सब समझते हैं कि उसके पीछे कितना बड़ा साइंस है। आज साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि सनरेज के जब ग्रहण लगता है तो सूतक माना जाता। बताइए, सब सारे देश में भारतीय परंपरा में किस बात से माना जाता? जैन धर्म में तो जब जब सूर्य देव ही सूर्य रहेंगे ही नहीं, जब उनकी रोशनी ही नहीं रहेगी तो हम भोजन ही नहीं करेंगे, सब भोजन अपवित्र हो गया। तो बताइए, रात का सारा भोजन अपवित्र हो गया। यहाँ तो सूर्य ग्रहण होने पर हम भोजन अपवित्र मान के और नहीं करते, तो फिर जब सूर्य पूरी तरह से विदा ले लेते हैं रात में तो कैसे कर लेते हैं हम? इतने परंपरावादी ट्रेडिशनल कि एक तरफ तो सूर्य ग्रहण लगेगा तो भोजन नहीं करेंगे, वो सारा रखा हुआ भोजन व्यर्थ हो गया, सूतक लग गई। और दूसरे रात में नहीं लगी सूतक, रात में तो पूरी 12 घंटे की लग गई, फिर तो करनी नहीं चाहिए। जब 2 घंटे सूर्य ग्रहण में नहीं करते हैं तो रात्रि में कैसे कर लिया? सूर्य की अनुपस्थिति में हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आना बंद हो जाती है और फिर बैक्टीरिया बहुत तेजी से इंसेक्ट्स वगैरह ग्रो करते हैं, ये सब जानते हैं साइंस के हिसाब से। और इसीलिए उन सब की हिंसा से बचने के लिए, उन सब पर दया के वजह से, और सदगृहस्थ भी अपनी गृहस्थी में रहकर ऐसा अनुशासन अपने जीवन का बनाता है कि जिससे उसका और दूसरे का भी उपकार होना शुरू होता। भैया, अनुकंपा और दया ये तो सब जगह और भारतीय संस्कृति में धर्म ही माने गए हैं। अपन को स्वयं इस चीज का विचार करना चाहिए कि हमें जब उस मार्ग पर चलना है और अपना कल्याण करना है तो इन चीजों को अंगीकार करना चाहिए। पहचान रही, मैं उस समय 1971 में आगरा आया था, इक्के पर बैठ करके और धर्मशाला जाते समय जब थोड़ा सा कहा पिता ने कि थोड़ी जल्दी, तो इक्के वाला कहता कि हाँ जैन साहब, अब भी पहुंचाता हूं, 5:30 बजने से पहले पहुंचा दूंगा आपको। जैन साहब कैसे पहचान लिया? उसने पूछा हमने कि कैसे पहचान लिया आपने कि हम जैन हैं? तो उसने कहा ये शाम को जल्दी की हड़बड़ी तो जैन ही मचा सकता, क्योंकि अंतःकरणी रात में नहीं खाता। इसलिए हम इक्के वालों को भी मालूम है, जब कोई कहता कि इक्के वाले से कि पैसे ज्यादा ले लेना लेकिन जरा जल्दी पहुंचाओ, मेरे समय होने वाला है। हमारी पहचान रही है ये। विदेश में मैडम गांधी गई थी, जो कि पोल्यूशन बोर्ड की या कि काय की हैं, जीव रक्षा की हैं अभी इसमें, तो जब वो विदेश गई थी तो वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे दिन में चाहिए और शाकाहारी चाहिए थाली, तो उन्होंने कहा सीधा बोलिए ना, जैन थाली चाहिए। मतलब बोले हाँ, दिन जैन थाली में तो अंडा भी नहीं रहेगा और आलू प्याज भी नहीं रहेगा, अंडा तो बहुत दूर की बात है, आलू प्याज भी नहीं रहेगा, और दिन में भोजन आएगा, मतलब जैन थाली। भोजन के समय भी हमने, तब उन्होंने आकर के यहाँ वो संस्मरण लिखा कि इन हमारे भारत के रहने वाले एक समुदाय विशेष के लोगों ने कितनी मेहनत करके पीढ़ियों और ये पहचान बनाई होगी। अगर आप इतना सा कह दो कि जैन थाली इसका मतलब आलू प्याज नहीं आएगा और दिन में ही भोजन किया जाए, बताइए आप, हमने अपनी इस पहचान को बनाने में कितनी पीढ़ियों साधना करी होगी और आज हम एक क्षण के अंदर अपने थोड़े से स्टेटस और अपनी थोड़ी सी लोलुपता की वजह से, विषयाशक्ति के कारण कहो, चाहे अपने जीव के चटकारे की बात कहो, जो कहना चाहो आपको कहो, पर उसकी वजह से और अपने सारे डिसिप्लिन को, अपनी पहचान को, अपनी शाख को, अपनी प्रामाणिकता को, ये कहूंगा हमारी अपनी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी थी हमारी, हम प्रामाणिक माने जाते थे कि नहीं भाई, ये रात में नहीं खाएंगे, ये जीव दया का पालन करने वाले लोग हैं, ये आत्म विकास करने वाले लोग हैं। किसी की क्षति पहुंचाकर कोई अपना आत्म विकास नहीं कर सकता, सब जीवों की रक्षा करने वाला ही अपने चेतना का, वही चेतना विकसित मानी जाएगी जिसने हर जगह चेतना का अनुभव किया होगा। अपन कहते जरूर हैं कि कण कण में भगवान है, कैसे हैं, हर जगह वही चेतना है जो कि आत्म विकास करके और परमात्म अवस्था को प्राप्त कर सकती, फिर मेरे अपने जीवन यापन के लिए मैं उसे नष्ट कैसे कर सकता? उसे नष्ट करना यानी अपने को ही नष्ट करना है, किसी को मारना यानी अपने को ही मारना, और किसी को बचाना यानी अंततः अपने आप को ही बचाना है, ऐसा सोच छठी प्रतिमा धारण करने वाला घर गृहस्थी में रहकर ऐसा सोच उसका हो जाता कि नहीं, अब नहीं, दो रोटी खाना है तो दिन में बैठकर भी खाई जा सकती है, क्या आवश्यकता है कि इतनी जीवराशि के बीच कितनी जीवराशि होती रात्रि में, सब जानते, किसी से छिपा नहीं है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है जीव राशि अपार दिखने में आने लगती, और जो नहीं दिखने में आती उसका तो हिसाब ही नहीं, और वो सब कंटामिनेशन होता है, वो सब पॉल्यूटेड हो जाता पूरा का पूरा भोजन करते समय। लेकिन फिर भी, और अब तो बड़े बड़े आयोजनों में बड़े बड़े धन पैसे वालों के यहाँ पर भी यही प्रक्रिया शुरू हो गई, कहाँ किस आध्यात्मिक विकास की आप बात करेंगे। चाहे कितनी दान राशि दे दो, धन संपत्ति लुटा दो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा आप। जब तक जीवन में प्रामाणिकता नहीं आएगी, जब तक जीवन में स्वयं धर्म नहीं आएगा, तब तक ये सब चीजें। इसलिए अपने आध्यात्मिक विकास करने के लिए, आत्मिक विकास के लिए ये सारी चीजें अपन को ध्यान में रखकर, जिससे जितना बने भैया, हम तो ज्यादा कहेंगे आप कितना कर पाएंगे ये भी हम जानते हैं, लेकिन आचार्यों ने हमें जो कहने के लिए और कहा है वो तो हमारा फर्ज है कि आपसे कहें, और हमारा क्या फर्क पड़ने वाला। आप नहीं भी करेंगे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बताइए हमें कोई फर्क पड़ने वाला कि हमारा कुछ स्वार्थ सदरा उससे कि आपका रात्रि भोजन छुड़ा करके सबरे बचा के हम करवे वाले हों कछु नहीं, मतलब ऐसा कुछ हो तो ऐसा तो है ही नहीं। आप छोड़ेंगे आपका लाभ होने वाला है, आपके अंदर दया भाव उत्पन्न होगा, आपका अपना विकास कल्याण होगा, तो ऐसा सोच करके अपन को और इन सब चीजों का विचार करके करना चाहिए। जब विदेश जा रहे थे विवेकानंद धर्म के प्रचार के लिए, तो राम कृष्ण या राम तीर्थ, मैं भूल जाता हूं, राम कृष्ण तो उनके गुरुजी थे वो, तो वो नहीं थे उस समय आशीर्वाद लेने गए तब, तो शारदा माँ थी जो भोजन बना रही थी रसोई में, तो उनसे जाकर के कहा कि अपने काम में लगी थी। जब इन्होंने दो तीन बार कहा कि माँ आशीर्वाद दे दीजिएगा मैं जाऊं, तो कहा कि नरेंद्र वो चाकू तो उठाकर दे मुझे। नरेंद्र नाम था बचपन का विवेकानंद का, तो नरेंद्र वो चाकू उठा के दे। बड़ा आश्चर्य उनका कि माँ से मैं आशीर्वाद लेने आया हूं और माँ कह रही कि चाकू उठा करके दे। चलो चाकू उठा करके जैसे ही दिया तो चाकू हाथ में नहीं पकड़ पाई, और उसके पहले ही हाथ उठा के अभय की मुद्रा में कहा कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे द्वारा धर्म की प्रभावना होगी, तुम्हारे द्वारा अहिंसा धर्म फैलेगा। तो और आश्चर्य पड़ गए कि एक तरफ तो मेरे से चाकू उठाओ मंगाई, अब हाथ में ली भी नहीं, और जब मैं आशीर्वाद मांग रहा था तब दिया नहीं, अब आशीर्वाद दे रही। तो पूछ दिया कि माँ मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तो बोली बहुत लोग हैं जो धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, तुम भी जा रहे हो विदेश धर्म की प्रभावना करने के लिए, लेकिन जीवन में जब तक धर्म और अहिंसा नहीं आई तब तक क्या तुम अपनी बातों से प्रभाव डालोगे। मैंने तुम्हारी परीक्षा करने के लिए चाकू उठवाई थी कि देखे तुम मुझे चाकू कैसे पकड़ाते हो, सो तुमने फलक तो अपनी तरफ रखा और दस्ताना मेरी तरफ पकड़ाया, इसी से मुझे मालूम पड़ गया कि तुम अपने प्राणों को संकट में डाल के भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करोगे, तुम्हारे भीतर ये अहिंसा और दया आ गई है, इसलिए जाओ तुम अपने मिशन में अपने काम में तुम सफल हो। बताइए ये छोटी सी घटना हमारे जीवन को कितनी प्रेरणा देती है कि सचमुच हमारे भीतर भी ऐसा ही भाव आना चाहिए। हम अपने छोटे से जीवन चलाने के लिए किस किस की क्षति करेंगे, हम किस किस के प्राणों का आघात करेंगे, एक दिन वो भी बलवान होकर के हमारे प्राणों का आघात करेगा। भाई यहाँ तो सब अपना अपना, और जब जिसको अवसर मिलता है तो अपना हिसाब तो चुकता कर ही लेते हैं, क्यों अपन भूलते हैं कि हमारा किया हुआ हमें नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं, सबको अपना अपना किया भोगना पड़ता। आज हम दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, हम तैयार रहें उसके द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में हमारी कोई ना कोई क्षति निर्धारित हम अपने हाथ से कर रहे, कोई और नहीं कर रहा है, हमारे हाथ से करते हम। इसलिए हमारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव अगर आ जाता है तो भी हमारा आध्यात्मिक विकास और आसानी से होता और हमारा जीवन अच्छा बनता। इसी भावना के साथ कि हम सब जो है अपने जीवन का विकास करें, उसे अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
मीरच पच कर गापिल निंद्रा में सोता
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता वो
अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरिते
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो
करते तप सैल नदे तट पर तरु तर वर्षा की जड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर ज्वाला और तेवाने मानो जड़ते यों पुल जड़िया
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
जग को दे दी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते हो शम की अविनश्वर मणिया
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम मिथ्या तम नास वेखो ज्ञान
हम जिनके पैर छू रहे हैं हमें देखना तो पड़ेगा कि वे चरण किस दिशा में जा रहे हैं वे अपने जीवन को ऊंचा उठाने की दिशा में जा रहे हैं तो फिर हम उन चरणों की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन भी ऊंचा उठा है। आदर्श उसे कहते हैं जिसके सम्मुख पहुंच करके हमें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है और हम वैसा ही अपने जीवन को बनाना शुरू कर देते हैं। दर्पण को आदर्श कहते हैं जिसके सामने पहुंचकर हमारे चेहरे पर लगी हुई कालिक या हमारे चेहरे की सुंदरता दोनों हमें एक साथ स्पष्ट दिखने लगती है। हमारी मनोमता और हमारी निर्मलता जिनके चरणों में बैठने से जिनके दर्शन मात्र से स्पष्ट हो जाए कि निर्मलता मेरा स्वभाव है मनोमताएं मेरी अपनी अज्ञानता और अशक्ति से आई हुई है ये स्पष्ट होने लगे उनकी सेवा करना उनके लिए किस तरह से सेवा करें तो चार प्रकार से औषध से आहार से उनको स्थान इत्यादि दे करके और जो ध्यान ध्यान में कारणभूत है ऐसे उपकरण दे करके उनकी सेवा की जा सकती है। यह जो चार प्रकार का दान है वही सेवा के चार ढंग है। यह परमार्थभूत सेवा है। संसार में जो प्रचलित सेवा है वो लौकिक सेवा कहलाती है वो लौकिक दान कहलाता है। लौकिक दान भी परस्पर एक दूसरे के उपकार में कारण तो बनता है लेकिन जो पारमार्थिक सेवा है या जो अलौकिक दान है वो हमारे आत्म उत्थान में कारण बनता है। हमें दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग और स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। तब सेवा और दान का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अपने भीतर क्लियर हो जाएगा। लौकिक जो दान है वो तीन तरह से किया जाता है, दया भक्ति, समभक्ति और सकल भक्ति। ये तीन लौकिक दान के भेद हैं। जिस किसी जीव को दीनहीन देखकर मन में उसकी जो मदद की जाती है, उस पर जो काम किया जाता है वो सब दया भक्ति कहलाता है। उसमें हम विचार नहीं करते हैं कि वो कैसा है, गुणवान है या निर्गुण है। इस प्रकार के दान से भी लोक व्यवहार चलता है। समभक्ति वो कहलाता है जिसमें हम अपने समान आचार विचार वाले को धर्म व्यवस्था के सम्मान के साथ अपनी बेटी देते हैं, वो समभक्ति कहलाता है। यह भी लोक व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है। कंडीशन रखी है कि अपने समान आचार विचार वाले व्यक्ति के लिए घर गृहस्थी के लायक सामग्री के साथ अपनी बेटी को देना, ये मतलब है कि आज हम सामान्यतः पैसे की देखते हैं, आचार और विचार की समानता नहीं देखते हैं। और यही वजह है कि यह जो दान की प्रक्रिया है जो लौकिक है वह भी लोकोपकार करने में कारण नहीं बन रही है। और तीसरा है सकल भक्ति, अपने योग धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम पुत्र के लिए अपनी समस्त कुल परंपरा और धन संपदा को सौंप देना और स्वयं सन्यास्त हो जाना, स्वयं सन्यास ग्रहण कर लेना, ये कहलाता है सकल भक्ति। आज यह प्रक्रिया भी दान की जो लौकिक है वो देखने में नहीं आती, बटवारा करना पड़ता है, बंदोबस्ते करना पड़ते हैं। जबकि नीति विचार नियमी सत को राज दियो बढ़ागी, न्याय नीति का विचार करके जो नियोग दिखता है उसे अपनी समस्त संपदा देकर चक्रवर्ती मुनि बन जाते हैं। परंतु तो वो लौकिक दान भी है तो ऐसा दान जो धर्मात्मा पुत्र है उसे ही सारी कुल की परंपरा और धन संपदा देंगे, शेष के लिए कोई मदद नहीं करेंगे। अपने व्यसनी पुत्र की मदद करने वाले को यह विचार करना चाहिए। हाँ, वो लौकिक दान भी नहीं देख रहा है ठीक से, अभी कोई कुछ नहीं बोल पाता आज के समय में। घर में अगर कोई शराब पीता हो या चरस भांग और अन्य नशे करता हो फिर भी पिता की धन संपदा का अधिकारी हो जाता है, ये विचारणीय है। क्या ये वास्तव में दान कहलाएगा? ये तो लौकिक दान भी नहीं कहलाएगा। लौकिक दान की तो चर्चा बाद में करेंगे। अगर ठीक ठीक से अपनी कन्या का दान इन तीनों में भी अगर ठीक प्रकार से ये किए जाए तब ये भी परस्पर एक दूसरे का उपकार करने वाली चीज है। लौकिक उपकार तो उनसे हो ही जाएगा। बहुत उदाहरण आपने पढ़े सुने होंगे। मेरे जीवन में एक देखने में आया वो आपको बताऊं। एक माता पिता का एक ही पुत्र था और वो 14 वर्ष का होने पर अपना जन्मदिन मनाने सिद्ध क्षेत्र से दर्शन करके लौट रहा था। कार एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो गई। ब्रेन डेथ अभी जीवित है लेकिन थोड़ा समय बाकी है, 5-6 घंटे जिएगा। ब्रेन डेथ हो चुकी है, कंप्लीट डेथ होने में थोड़ा समय लगेगा पर होगी अवश्य, बचा नहीं सकता कोई। ऐसी स्थिति है, माता पिता से पूछा जाता है कि क्या कहना करना चाहेंगे। उस बेटे का जब से उसने होश संभाला था तब से कहता था कि मेरे जीवन का एक एक कर भी किसी और के उपकार में लग सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा, ये उसकी भावना थी। वो माता पिता को ध्यान में थी, ऐसे संवेदनशील क्षण में उन्होंने निर्णय लिया था और निर्णय लिया क्या उसकी पूर्ति भी की। दोनों किडनियां दो लोगों को ट्रांसप्लांट करती गई, दोनों आंखें दो लोगों को दे दी गई और पूरे शरीर की स्किन एक 80% जल गए व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कर दी गई। 5 लोगों को जीवन मिला। उसका जीवन तो निश्चित ही था कि समाप्त ही होगा। इसमें ज्यादा विचार करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, इसलिए ये लौकिक दान है, इससे कोई प्रमाण करने वाला नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा विचार नहीं करना। मैं तो मुश्किल करेंगे इसलिए पहले मैंने कह दिया कि वो जो आप अपनी संपत्ति अपने शराबी बेटे को दे रहे हो उस पर ज्यादा विचार करना इसकी अपेक्षा, क्योंकि लोग करते हैं इस पर विचार करते भी नहीं होते हैं प्रश्न की इस तरह के दान को भी क्या दान कहेंगे, आदमी में क्या क्या रखा है दान का, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि आदमी का इसमें क्या रखा है कि अगर कोई पुत्र संतान और मदद दान करे तो क्या वो पिता के पैसे की हकदार है या पिता को उसको पैसा देना चाहिए या कि घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। इसमें कहीं कोई लोग करुणा दान की जो महत्ता है उसको भी समझते हैं और इस तरह जो अपने जीवन में विकृतियां हैं उनको तो हम बढ़ाते चले जाते हैं और जिससे हमारे परिवार में बनाई पाएगी उस प्रक्रिया में और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमें दान के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। दान 3 तरह से दिया जा सकता है, वो भावनाओं पर निर्भर है कि दान का फल कैसा क्या मिलेगा। आपने क्या दिया है इसका महत्व है लेकिन आपने कैसे दिया है इसका महत्व ज्यादा है। अगर संदेश पूर्वक दान दिया जाता है तो सब तामसिक दान है, जिसके देते समय संतोष, जिसे दे देने के बाद संतोष, की जरूरी बात नहीं है, चार लोगों के बीच में इज्जत का सवाल है, इसलिए भीतर अत्यंत संकोचित होने के बावजूद भी सबके कहने से बोल दो। अब सब कह रहे हैं और इज्जत का सवाल है, चार लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे आदमी होकर कचू नहीं दो दो
से जो कुछ भी कार्य होते हैं वे सब चेतना को विकसित
को नहीं प्राप्त हो। इसलिए दान देते समय भाव की महत्ता भी है। दूसरे प्रकार का दान होता है राजसिक दान। किस चीज के लिए? दूसरे का तिरस्कार करके अपने को स्थापित करने की भावना से, अपने अहंकार की वजह से। एक दिया जाता संतोष पूर्वक, दूसरा दिया जाता अहंकार पूर्वक। जितनी भी ये बोलियां हैं उन सब में यही प्रक्रिया होती है। विचार करना बहुत अच्छे से, वरना बोली की प्रक्रिया का ढंग अलग है कि जितना बोल दिया उतना देना आवश्यक है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो सिर्फ एक दृष्टि से बोलते हैं कि दूसरे को पीछे करके मैं आगे निकल जाऊंगा। ईमानदारी से विचार करना इसका, मुझे प्राप्त हो जाएगी। और अगर ऐसा ही भाव है तो बोलने के बाद उस राशि को हम देरी क्यों नहीं देते, पीछे क्यों हट जाते बोलने के बाद? अगर हमने 1000 रुपये बोले और दूसरे ने 2000, तो मेरा फर्ज है कि 2000 रुपये दे, क्योंकि बोले हैं। लेकिन कोई नहीं देता तो उसके पीछे अहंकार ही छिपा हुआ है। उतना ही नहीं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिया। ये उदाहरण मैंने अपने सामने देखा है एक व्यक्ति का, शिवपुरी में। मैं नहीं बताऊंगा, इतना अहंकार पूर्वक और उनसे ज्यादा जैसे ही किसी और ने दिया, उन्होंने फिर दिया नहीं। कौन है यहां पर जो मेरे बोली बोलने के बाद उसको दे सकता है? इतना अहंकार आप सोच सकते हैं? ऐसे दान देने वालों की भी पीठ थपथपाई जाती है। 2000, हाँ, आज के समय में तीन तीन प्रकारों में घर में जैसे कार्य करके धन आता है, ऐसे ही एक तीन प्रकारों में धर्म के कार्यों को करने के लिए भी हमें संपत्ति इकट्ठी करना पड़े, तो फिर समझना कि पंचम काल आ गया। यही कहूं वस्ती ज्यादा क्या था? आज वर्तमान में यही चीज देखने में आती है। ये सब राजसिक दान है जिसमें हम अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं चार लोगों के बीच में, और इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा दाता हूं। एक ब्राह्मण को सेठ जी ने बुलाया अपने घर भोजन के लिए। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे वो है ब्राह्मण, अत्यंत स्वाभिमानी, परोपजीवी नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना। आकर के सेठ जी के यहां पर भोजन की, भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो सेठ जी ने कुछ पैसे तिजोरी में से निकाले, निकालते समय और बहुत सारे पैसे नीचे गिर गए, चांदी और सोने के सिक्के। पता नहीं सेठ जी के मन में क्या आया, पूरे के पूरे जितने बाहर तिजोरी से निकल गए थे वो सब उठा करके पैसे सामने रख दिए और कहा, मेरे ब्राह्मण तुम्हें क्या ध्यान रखेगा, मैं तो तिजोरी से बाहर आया हूं, तिजोरी में रखता नहीं हूं। ब्राह्मण जी ने क्या कहा, 1 रुपया कहीं से सिक्का उनको दक्षिणा में मिला था, वो सिक्का पॉकेट में से निकाला, उस ढेर में फेंका और कहा कि ऐसे कुछ दान को मैं स्वीकार भी नहीं करता हूं, देता ही हूं। क्या जिसमें पुरस्कार पूर्व दिया जाए, अहंकार का पोषण किया जाए, वो दान स्वच्छ नहीं है, लेने योग्य भी नहीं। ये राजसिक और तामसिक दान हमारे जीवन का उत्थान करने वाले नहीं है। हमें अपनी इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए। दान तो सात्विक ही होता है। सात्विक दान में देने वाला अत्यंत विनय भाव से देता है। क्या विचार करता है दर्शन में दान की प्रक्रिया ऐसी ही है जो
गुरुदत्त शक्ति में आया जाता था, तो कोई मदद करने नहीं आया। ये बहुत सीधी थी।
रोज हम इस प्रक्रिया को देखते हैं, साधु जनों के लिए दान देने वाला शरत अपने को बड़ा मानते हैं क्या? नहीं मानता। वो तो कृपा मानते हैं कि कृपा आपकी जो आपने स्वीकार कर लिया, ये है हमारे यहां दान तीर्थ, जिसे राजा श्रेयस ने भगवान ऋषभदेव को पहली बार दान देकर के प्रारंभ किया था, जिसमें देने वाला अनुभाव से भर गया है, लेने वाले को उपकार मान रहे हैं कि कृपा आपकी, और लेने वाला निष्पय है, उसने याचना नहीं की है, तब वो लेने वाले का लेना सार्थक होगा। यहां तो लेने वाला याचना करे और देने वाला अहंकार संतोष करे, तो ये दान की प्रक्रिया अत्यंत दूषित है। हमने कई सभाओं में देखा है जब लोग झोली लेकर के निकल जाते हैं, हमें विचार करना चाहिए इस प्रक्रिया पर। यात्रा करने पर अहंकार कर दे कि चलो तू कि आप झोली लेकर आए तो इसलिए ये डाले पैसे हमने, जो आ गया ऐसा क्या हम कर रहे हैं? हमने इस दान की अत्यंत पवित्र प्रक्रिया को क्या रूप दे दिया है? हमें विचार करना चाहिए। सिर्फ विचार करने के लिए कह रहा हूं, बाकी और कुछ मत करना। जैसा चल रहा चलते दो, चल लो। मैं कभी किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए किसी को बाध्य नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि विचार करें। जो कर रहे हैं अगर आप विचारवान हैं तो विचार करें, में सही है तो फिर किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो क्रिया अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, वो अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। हम इतने विचारवान होकर के और देखा देखी इस तरह की प्रक्रियाओं में आसानी से शामिल हो जाते हैं।